राम। श्रीमद् भगवद गीता पाठ सातवा अध्याय श्लोक 21 से 30। सातवा अध्याय श्लोक 21 से अध्याय समाप्ति पर्यंत।
Oh. Sanjay Rupi Ji, Thank you. वसतु
गीता पाठ सातवां अध्याय श्लोक 21 से 30 सातवां अध्याय श्लोक 21 से अध्याय समाप्ति पर्यंत।
वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यो यो यां यां तनु भक्त श्रद्धयाति भूमेच्छति तस्य तस्य जलं श्रद्धां तामेव वेदधान्यहम् श्रद्धया श्रद्धया योक्त तस्याराधनमीहते लभते सततः कामान् मयैव वेदान्वितान् अन्तवात्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देव यजोयान्ति मद्भक्तायान्ति मामपि अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नौ मान्यन्ते मामवोद्धय परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनो नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परं तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ये द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां गृहव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्वेदो कृष्ण मध्यात्म कर्म चाभिलम् साधिभूतानि दैव मां साधियज्ञञ्च ये विदु प्रयाणकाले च मां ते विदुर्योक्तचेतस ते विदुर्योक्तचेतस। श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञान विज्ञान योगानां प्रथमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुलदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28 अगस्त सन 1991 को साय लगभग 4 बजे हुआ। राम
स्थित पग्य के लक्षणों का वर्णन हो रहा है, उसमें खास मन और इंद्रियों को वश में करने की बात कही गई है। गीता के विषय में विचार करने से ये बात मालूम होती है, कर्मयोग का जहां विषय है वह इंद्रियां और मन को भस्म करने की विशेष बात कही है, और भक्ति का जहां वर्णन है वो भगवान में लगाने की बात कही है, और ज्ञान मार्ग है वह सत असत के विवेक की मुख्य बात कही है। और जगह भी इंद्रियों के भस्म करने की बात है, पर इसमें विशेषता से क्यों कामना है ना, कामना आसक्ति वासना तृष्णा आशा आदि जो चीजें है इस संसार की तरफ ज्यादा रहती, इनको मिटाना है। इस वास्ते भागवत में कर्मयोग तो कामी नाम कामियों के लिए कर्मयोग बताया है, और त्यागियों के लिए सांख्य योग बताया है, न अत्यंत आसक्त न कोई कामना उसी भक्ति योग। तो अभी ये बात बताई चार श्लोकों में कि विषयों का ध्यान कर युक्त आशित मतपरा मेरे पर बैठे तो नहीं बैठने से क्या होगा, तो ये ध्यान तो विषम दो श्लोक बताए। विषम ध्यान में आसक्ति होती जाती है और संग्रह होना पर कामना होती है, कामना पर क्रोध होता है, क्रोध सम्मोह होता है, सम्मोह स्मृति नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि पसंद हो जाता है, और राग द्वेष वियुक्त ही रसम आत्मवशी इंद्रिय विषय अंतरण अपने वशीभूत ऐसी इंद्रियों के द्वारा विषयों का आचरण करता है तो विषयांत तो प्रणश्यति होगा, विषयान इंद्रिय शरण आचरण करता आत्मविषय प्रसाद मत गति और प्रसाद सर्व दुख महान जाए प्रसन्नबुद्धि प्रवृत्ति परमात्मा बहुत सुनिश्चित हो जाती है। मन बुद्धि इंद्रिया के बस किए बस किए बिना कर्मयोग नहीं चलता। कर्मयोग में संसार के साथ संबंध रहता है ना, ज्ञान योग में तो निर्लिप्तता रहती है, तटस्थता रहती है, बोध में स्वरूप रहा है, संसार से मतलब नहीं है, और भक्ति योग में भगवान से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। पर कर्मयोग में संसार की सेवा करना है तो इसके साथ संबंध रहने से मन इंद्रियों को वश में रखने की बहुत विशेष आवश्यकता है। इस बात से ज्यादा इसमें है, इसका अर्थ ये नहीं है ज्ञान योगी और कर्मयोग भक्ति योगी है उनके लिए मन इंद्रियों को वश में करना नहीं है, खुला ये खुला करने का तात्पर्य नहीं, विशेष इन पर जोर यहाँ पर है, कर्मयोग में इन पर विशेष है। ध्यान योग में भी यही कहा है, माना सही मत्स्य से युक्त आसीन बल पड़ा, ये या मत पर कहा है। तो भगवत पुराण होने के लिए कर्म योगी को ध्यान योगी को भी जरूरत है और इंद्रियों को बस में करना दोनों की जरूरत है, पर कर्म योगी की विशेष बात है। अब मंगल इंद्रिया बस में है उसका नाम है युक्त, नास्ति बुद्ध अयुक्त से नयुक्त से भावना। जो अयुक्त पुरुष है, योगी नहीं है, इंद्रिया मन बस में नहीं है, समता का लक्ष्य पूरा नहीं है, ऐसे उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। ये बुद्धि की स्थिरता पहले मैंने कह दिया कि बुद्धि की स्थिरता कर्म योग में है, ध्यान योग में मन की स्थिरता की मुख्यता है, और बुद्धि योग ज्ञान योग आदि इनमें सब में बुद्धि की स्थिरता की मुख्यता है। मन की स्थिरता और बुद्धि की स्थिरता दो चीज है। मन की स्थिरता तो वो है जहाँ मन लगा दे वहाँ ही लग जाए, जहाँ से हटा दे वहाँ से हट जाए, ऐसी मन के ऊपर अपना अधिकार हो जाए या आधिपत्य हो जाए, ऐसा होने पर वो कर्म योग आदि कर सकता है, मन पर ध्यान कर सकता है। और ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग में मन पर भगवान ने ज्यादा जोर नहीं दिया है, इन पर दिया है बुद्धि की व्यवसायत्मिका एक बुद्धि, जिसमें भक्ति और कर्म योग के बीच में व्यवसायत्मक बुद्धि एक बुद्धि एक निर्णय कि हमें इस मार्ग में चलता है, चाहे सुख पावे दुख पावे कष्ट उठावे जो कुछ हो जाए हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, ऐसा पक्का इष्ट हो जाए। ऐसा पक्का इष्ट होने से वे सब काम ठीक हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। पतिव्रता जैसे पतिव्रता रहे पति के पास यूं साहिब के ढिग रहे दासा, दास रहता है तो उसमें भी सम्यक भविष्य तो ऐसा, और इसमें भी व्यवसाय का बुद्धि कर्म योग में और भक्ति योग में बुद्धि व्यवसाय होनी चाहिए, एकदम स्वयं व्यवसित हो जाए तो बुद्धि व्यवसाय का हो, नहीं तो बहुत सागर तो बुद्धि अव्यवसाय नाम एक निश्चय नहीं होता, कई तरह की कामनाएं होती है और उनकी शाखाएं कई तरह की, एक एक कामना पूरी करने के लिए उपाय कई तरह के होते हैं, परंतु इसके तो बस एक ही होती है व्यवसाय तो होती एका, वो न होने में भोगेश्वरी प्रसन्नता न बताया। भोग और संग्रह की रुचि है, ये दोनों में से एक होता दोनों हो वो वास्तव में परमात्मा प्राप्ति का निर्णय नहीं कर सकता, अटल निर्णय कर नहीं सकता, क्योंकि मन में भोगों के भोगने की और पदार्थों के संग्रह करने की इच्छा है, ये इच्छा जब तक है तब तक पारमार्थिक मार्ग में ऊंचा बढ़ना बहुत कठिन है। इस बात भगवान ने साफ कह दिया, 41 से 44 तक का प्रकरण है उसमें साफ कह दिया, व्यवसाय में उसी समाधु न भी दिए थे भोगेश्वरी प्रसन्न थे, उनकी परमात्मा से बुद्धि स्थिर नहीं होती, मान एक परमात्मा का ही प्राप्त उस परमात्मा का ही भले, परमात्मा को ही जानना है हमारे एक अपना उद्धार ही करना है, ऐसा निश्चय भी कर नहीं सकते, ये निश्चय बिना उसमें चलता नहीं, ये रिश्ता होना ही पड़ेगा। कोई सा ही साधन करो उसमें एकता एक दृढ़ता एक होनी चाहिए, दृढ़ता नहीं हो तो विचलित होने वाला कुछ कर नहीं सकता। एक निश्चय अपना पक्का कर विचार पक्का कर लिया जिसे पति बस एक धनी बस अब हो गया हो गया हो गया, कैसा है जैसा तैसा ही हो गया बस, तो ऐसा पक्का निश्चय होना चाहिए तो उसकी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ये किसके नहीं होता, मन इंद्रिय बस में जिसके नहीं है, अयुक्त है, युक्त नहीं है मन योगी नहीं है, अर्थात सांसारिक पदार्थों से विचलित हो जाता है, भोग और संग्रह की बातें आते ही वहाँ विचलित हो जाता है, ऐसा नहीं तो ऐसा होता है विचलित होता है वो अयुक्त है, नास्ति बुद्धि अयुक्त है, तो अयुक्त के बुद्धि नहीं होती और एक उसकी भावना भी नहीं होती, बुद्धि की निश्चय नहीं होती, सब जगह परमात्मा तत्व है ये भावना में सिद्ध नहीं होती, नशा भाव है तो शांति, जब परमात्मा की भावना नहीं हुई तो शांति को नहीं मिलेगी, अरे शांति में तो सुख कहाँ है, उसको सुख नहीं मिलेगा और दुख पाता ही रहेगा, बार बार लंबे रास्ते से दुख ही पाएगा, अशांत से कुछ ऐसा। क्यों महाराज? उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, उसको सुख नहीं होता, शांति नहीं होती। कारण क्या है? तो कहते हैं इंद्रियाना नेत्र सांग यन मनोनुविधि ऐसी, इंद्रियों के द्वारा विषयों का आसरण करते हैं, आसरण करते करते जिस किसी विषय में मन साथ दे देगा, इंद्रियों के विषय आसरण करते हैं, किसी एक इंद्रिय के एक विषय में आदि करते हैं, तो उसी सब पर की हारी जाएगी। सदस्य प्रज्ञा वायु नाम वापस, जैसे नौका चलती है उसके विरुद्ध पवन आता है तो बीच में वो कपड़ा आता है गुरुद्वार कड़ा लंबा मोटा, तो वो कपड़ा है उससे हवा ठीक अनुकूल चलाते जिसे चलाना चाहे चला सकते हैं, परंतु अनुकूल न और प्रतिकूल हार जाएगी तो वो जबरदस्ती नौका को ले जाएगी। वो जाना नहीं चाहते, मल्ला उधर लेना नहीं चाहते हैं, परंतु प्रतिकूल होने से हो जाते। इस बात भगवान का माया अनुकूल मेरे अनुकूल हो जाते, मेरी कृपा एक अनुकूल हवा हो जाती है जो उसके विचार के अनुसार उसको फिर धक्का देकर वही ले जाती है परमात्मा की तरफ। तो हवा विरुद्ध होने से काम नहीं चलता। तो हवा विरुद्ध क्या है कि मन में एक दृढ़ता नहीं है, एक अच्छा। तो इंद्रियों के आचरण करते हुए जिस इंद्रिय के साथ में मन लग जाएगा बस उसकी प्रज्ञा को एक इंद्रिय ही रह लेगी, एक तरफ इंद्रियों के चल गया, भोगों की तरफ गया, ऐसा आराम चल गया, किसी तरफ भी इंद्रिय के साथ मन लग जाएगा, मन इंद्रिय दो हो जाएंगे तो दस की प्रज्ञा, वो प्रज्ञा जो है स्थिर बुद्धि उसको हरण कर लेंगे, वो नष्ट हो जाएगी, रह नहीं देगी। अम्बसी नाव में वायु नाव जब मैं वायु जैसे नौका को ले जाता है ऐसे उसकी प्रज्ञा को भोगों में ले जाएगा। मार्ग भ्रष्ट तो करती है वायु उल्टी चलने से, पर मार्ग भ्रष्ट नहीं है। पहाड़ होते कई कई पर्वत होते हैं समुद्र में, तो रास्ता होता है उस रास्ते में चलने में ठीक रहता है, रास्ते के इधर उधर पत्थर होते हैं तो न जाने किस पत्थर में टकराएगी, जब मारेंगे उसको तो हो जाएगी तो किसी पत्थर में जाकर टकराएगी, और पत्थरों में भी विलक्षण होती है, विलक्षणता है। समुद्र में कहीं कहीं चुंबक के पत्थर होते हैं, तो चुंबक के पत्थर होते हैं तो जहाज चलता है, जल का जहाज लोहे का, तो लोहा जाकर उसको पकड़ के खेल देता है, फिर चला ठस हो जाती, फिर अपनी बस नहीं चला, कैसे चला रहे तो चुंबक खेचता है। तो ये कब होता है कि मार्ग भ्रष्ट होने से, मार्ग मार्ग चलता है तो उस मार्ग में बाधा नहीं आती, एक दोहा आया है मार्ग में इस तरह से नौका चलाते थे तो जहाँ पत्थर की खाड़ी और पत्थर और विशेष खतरा उस जगह सिकंदर बादशाह ने वहाँ झंडा गाड़ दिया और पत्थर चिना करके ऐसी कर दी कि इस तरफ से नौका न आवे, वो झंडा मना करता उधर। इधर एक कवि ने कहा है कि स्त्रिया की जो वेसर होती है या पहनने की नथ होती है, नथ तो नथ वो क्या है कि मानो भुजा सिकंदरी पतिखंड मना करंत। बेसर यूं बरजंत, वो बेसर है यूं रहती है यूं, ज्यादा सोना हो जाने से नाक के कटने की संभावना होती है, तो यहाँ वो बड़ी ही बेसर होती, मैं शंकर डाल कर कान के बांध देते तो वो इस तरह से रह जाता है, गहना नाक का गहना होता है बाएं तरफ यहाँ। तो वो क्या है और एक कवि ने कहा है, मानो ध्वजा सिकंदरी पथकन मना करन, ये सिकंदर पूजा का है ये झंडा, तुम भ्रष्ट चलोगे तो तुम मत जाना, इधर खतरा है तुम मत जाना भाई, ये झंडा है ये तो मना करते हैं। तो भोगेश्वरी प्रसन्नता ना भोग प्रसन्न हो गए, उनकी बुद्धि ठिकाना नहीं जाएगी, वो जो है झंडा है उसकी मना करेगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा तो का तो नौका टूटेगी, का चुम्बक में फंसेगा, का डूबेगी, रस्ते में चल नहीं सकेगा, जाना है रस्ते नहीं जा सकेगा। यन मनो अनुविधि जिसके साथ मन को अनुभव होता है तद अस्य प्रत्येक भारतीय प्रज्ञा, उसकी ये जो प्रज्ञा है स्थिर बुद्धि परमात्म तत्व की प्राप्ति करने का दृढ़ है, ये प्रज्ञा प्रज्ञा अपहित हो जाती है। तस्मात यस्य महाबाहो निवृत्तानि सर्वशः, इस बात से अर्जुन जिसकी इंद्रियां शीघ्र ठीक निगृहित है अपने वश में है, किस तरह इंद्रियां इंद्रियार्थिया इंद्रियों के अर्थों से इंद्रियों को निगृहित है, संयम कमें है, निरंतरता है, तो उसी प्रज्ञा स्थिर होती है, इंद्र प्रज्ञा स्थिर होने नहीं जाएगी, एक विषय के साथ में मन लग जाए जाती है। कुरंग पातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विजय पंच एक प्रमादी स कथंग न हन्यते यस सेवते पंच विजय पंच, पांच इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है प्रमादी असावधान है, दशा कुदशा ही होगी। कुरंग हरिण होता है वो कान के बस में होकर मारा जाता है, ये कस्तूरी मृग होते हैं ना, तो मृग को बीना बहुत सुंदर लगती है, सुना कान के बस में होकर भी सुनने लग जाते हैं, तो आके मीच करके उसको मस्त हो जाते हैं, तो ध्वनि में गोली मार देता है, कसूरी देता है। हाथी ऐसे ही अथनी देख करके कागज की अथनी देख जाता है, काटे में गिर जाता है। पतंगा है वो रूप के वश में होकर के आग में झुलस जाता है। मछली है वो आटे की गोली से मांस का टुकड़ा उसमें बस बस जाती है। भवना है वो नाक की पांच विषय बताए शब्द स्पर्श रूप गंध, भवना गंध में फंस जाता है। तो एक एक विषय में ये प्राणी प्राण देते हैं, मनुष्य के पांचों विषय है, और फिर प्रमाद है, सावधानी है नहीं, सावधानी हो तो बच जाता है। एक प्रमादी सकथन न अन्यते, वो कैसे माना नहीं जाता, यह सेवते पंच भी देव पंच, पांचों इंद्रियों से पांचों का सेवन करता है, पर प्रमाद है सावधानी नहीं है तो वो मारा जाएगा, जैसे ये एक एक इंद्रिय के भस्म हो गए से ये सब मारे गए, इस तरह से उसकी दशा होगी। तस्मात यस्य महाबाहो निवृत्तानि सर्वशः, इसलिए सब इंद्रिया अपने विषयों से निगृहित है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा उसकी प्रज्ञा से बहुत, नहीं तो प्रज्ञा से नहीं हो। बातें बहुत सीख सकते हैं, बहुत कह सकते हैं, बहुत पढ़ सकते हैं, पुस्तकें लिख सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, विवेचन बड़ा सुंदर कर सकते हैं, पर तो सामने विषय आया जाए, रुपयों की गड्डी आ जाए, वाह ठिकाना रहना मुश्किल हो जाता है, भूख आ जाते हैं सामने, भूल जाते हैं, वो पंडित है याद भी रहे, पर उपदेश कुशल बहुत से जे आचर्य ते नर घन है, पर उपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वे भ्रंते, दूसरों को उपदेश देते समय तो पंडित ही आ जाती, सब भी आ जाती, परंतु विस्मरण भी है शिष्टत्व, वो पंडित ही भूल जाते हैं, कब के स्वकार ये सब उपस्थित है, अपना जब काम सामने आता है भोग भोग सामने आता है, यही भी सामने आता है, रुपये सामने आते हैं, भोग सामने आते हैं, भूल जाते हैं। मन होता है कि ये इतना ले लो अच्छे काम में लगा देंगे, अच्छे काम में लगा देंगे उपकार हो जाएगा, तो तुम्हारा अच्छा ही है, भगवान अर्पण है वही, भगवान का अर्पण कर दो, लेना फिर अच्छा लगाना तो पहले से ही लो मत, भगवान का नहीं हमारा, ये सब आपके अर्पण, हमें लेना नहीं है, आपके अर्पण है, बड़ा भाई पुण्य जल, जिनसे कुछ लेना नहीं, जीना वीर हजार, जिसने नहीं लिया है वो हजार बार दान जितना पुण्य होता है न लेने का स्पर्श ही नहीं, अपना आधा ही नहीं होती है। परंतु ये बात समझ नहीं आती कि गुरु क्यों रहता है मोह, कहते ऐसे कैसे चलेगा काम, अपने अच्छे काम में लगा देंगे, किसी दूसरे को दे देंगे, सहायता कर देंगे, किसी काम आ जाएगा, यहाँ पड़े क्या काम आते हैं, तो हम दूसरों के सेवा के लिए ऐसा काम करते हैं। धर्मार्थम जिस वित्ते वरंत मेरी धर्मी है, शास्त्र के धर्म के लिए दान पुण्य के लिए दूसरों को उपकार करने के लिए जो धन की चेष्टा है कि धन कमा लें, उसे नहीं करना चाहिए। धन उपार्जन इस बात से नहीं करना चाहिए, क्यों कि प्रसारण आदि पंकज दुरादर्श प्रश्न परम, हमारे घर में पानी की कल चलती है तो थोड़ा कादा लगा रहे गाड़ी में नाली में से थोड़ा कादा लगा रहे हो, क्योंकि घर में चलती है धो लेंगे तो धो लेंगे, क्यों लगाते ही क्यों कादा, तो ऐसे पैसा लेकर के फिर अच्छे काम करेंगे, उपकार करेंगे, बाबा कादा लगाओ ही मत, कादा लगाने पर दूर नहीं होगा, सटाक भर कादा लगेगा तो सटाक भर पानी से कभी दूर नहीं होगा, शेर दो से पड़ चाहिए, और वो दौड़ के साफ करने पर फिर भीतर में मैला पड़ा तंतु बैठ जाएगा, अपने नमस्ल हो जाएगा। इस वास्ते धर्म के लिए भी धन की इच्छा है वो नहीं करनी चाहिए, वो धन की इच्छा फायदेमंद नहीं है, नुकसान है, दीखता है ऐसे लोगों में, वो महामाम दीखती है, बड़ा भाई दीखता है, दीखने में बड़ा अच्छा दीखता है, बड़े यज्ञ हुए हैं, बड़ा समारोह हुआ, बड़ा इतना हुआ, ये केवल बाह्य दृष्टि से दीखता है, शांति नहीं है इसमें। दूर स्पर्श नंबर दूर से स्पर्श ही नहीं करे, क्यों कादा लगावे, क्यों धोवे, लगा ही क्यों पहले, धोना ही साफ करना है, साफ कर लेंगे, कर क्यों नहीं, साफ है ही पहले से नहीं, क्यों लगाओ कादा पहले से आरंभ में ही, तो ये श्रेष्ठ होता है ये बात। परंतु द्रव्य का पदार्थों का महत्व सदैव अंकित है, तो इसके खर्च करने से बड़ा पुण्य होगा, धन के खर्च करने से पुण्य नहीं होगा, मामूली पुण्य होता है, कल्याण हो जाए वो बात नहीं है। अगर ऐसी बात हो तो धनी आदमी कल्याण अपना कर ले, गरीबों तो कल्याण आने ही नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि पास पैसा है, खर्च लेंगे खर्च खरीद लेंगे, ऐसी बात नहीं है, कोई एक की जरूरत नहीं, परमात्मा तत्व की तरफ चलने के लिए सामग्री की, रुपयों की, विद्या की, बुद्धि की, योग्यता की, पढ़ाई की कुछ गरज नहीं है। योग्यता जितनी आप में अधिक होती उतनी संसार में काम आवेगी, और असावधान रहोगे तो फंसोगे ज्यादा, योग्य आदमी ज्यादा फंसता है, और योग्य इतना नहीं फंसा, योग कौन फंसाता है, योग्य आदमी को तो चारों तरफ फंसाते हैं, वह योग्यता पसंद करने वाली है, परमात्मा योग्यता से नहीं मिलती, धन से नहीं मिलती, विद्या से नहीं मिलती, न हम दे न तपसा न चाहने न चिंतिया नबी के वेद यज्ञ वेदों के अध्ययन से यज्ञों के करने से कबो भी ऊपर सब करने से उनसे तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तत्व के बाधक जो है उनकी दूर करने में सहायता मिलती है, परंतु वो सहायता केवल लगन से ही मिल जाती है, केवल भगवान की लगन हो सब बाधा सब दूर हो जाती है, उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं, धन के द्वारा होगा ना, पढ़ाई की जितनी पढ़ाई की जाएगी होगी बिल्कुल भी, परमात्म तत्व प्राप्ति है वो खुद को होती है, मन बुद्धि की योग्यता से तो मन बुद्धि में आएगी, मन बुद्धि के कार्य में वो काम देगी, कारण में मन बुद्धि कितने योग्य से क्या काम देगी, थोड़ा विचार करें, कारण बढ़िया होगा तो कार्य बढ़िया होगा, कर्ता का क्या हो जाएगा फायदा, कलम अच्छी हो तो लिखना अच्छा हो जाएगा, उसका कार्य इधर संसार में अच्छा हो जाएगा, पर उधर उल्ट कर देखो तो क्या होगा, जयराम जी वहां कुछ नहीं होने वाला है, तो इस बात ये प्रेम नहीं रख सकते, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो जानते नहीं है। बहुत अच्छी बात है, पैसा ज्यादा है टैक्स ज्यादा लगेगा, जानते ज्यादा हो तो टैक्स ज्यादा लगेगा, कम जानते हो तो टैक्स आप पर कम लगेगा, सुगमता से प्राप्ति होगी। जैसे ज्यादा पास में योग्यता है, ज्यादा विद्या है और ज्यादा पैसा है, ज्यादा बल है, ज्यादा राज्य है, ज्यादा सम्मान है, जो ज्यादा आदर है, ज्यादा महिमा है, वो खतरे में है। साधक के लिए ये बहुत खतरे की बात है, जिसको न जाने दूसरा वो बढ़िया बात है। बात ऐसी है ऐसी, अब मेरी तरफ देखो तो ही पोल निकल जाएगा भाई। आपके तो बात को कहता है ऐसी और सुनाता है, परिचय बड़ा सुना है, क्या करे। हमारी तरह आप मत करना, आप सावधान रहना। मैं लगा हूँ तो जानकर के लगा हूँ, पर वो खैर रास्ता बड़ा खतरे का है, बहुत फंसने का है। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कहो, सीखने के लिए कहो। मेरे को सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी व्याख्यान सुना करो, बहुत बढ़िया बात की। सुना करो अर्थ क्या, आप जो सुनाने कर दो मैं दूसरों को सुनाऊं, ये नहीं, अपने को सुनाता हूँ, अपनी शंका अपने को सुनाता हूँ, अपने को सुनाया करो, जो सुन रहे थे अच्छी बात। अरे कबूतरों के लिए दाना डाल जा, कौवा खा जा खा जा, ऐसे अपने को समझाने के लिए कहना है, दूसरों काम आ जाए तो अच्छी बात, आ जाए नहीं आ जाए न आ जाए, अपने को अपने समझाना है ठीक तरह से। इस वास्ते आदमी घने हैं थोड़े हैं, आएगा नहीं आएगा भगत भगत, ये तुम्हारा मतलब क्या है। तुम तो अपना काम ठीक करना है, फिर ठीक हो जाएगा सभी। इस वास्ते परोपदेश वेदायाम सस्ता, उपदेश देते हैं औरों को, उसमें खतरा होता है, उपदेश में अभिमान बढ़ता है और अपने से कमजोर मानता है, अपने को समझदार विद्वान मानता है, दूसरों को विद्वान नहीं मानता, कमजोर मानता है। इनको समझा दूं मैं ठीक तरह से, ऐसा अभिमान होता है। हमारे बहुत रहा भी ऐसा, अब भी आ जाती है मन में कभी तरंग, परंतु भगवान की कृपा हुई मेरे पर, जो कहा मेरे वो नहीं है, कहने की अभी तक भी है, विवेचन करने की अभी तक भी मन है, ये निकली नहीं है साफ, तो निकालते हैं। देखो क्या होता है, भगवान की कृपा से होगा, उन्हीं की कृपा से, हमारे से कुछ नहीं होता है। तो इस बात से जिसकी इंद्रिया निकली तस्वीर प्रज्ञा प्रतिष्ठा, अब दोनों का अंतर बता गई, ज्ञान निशा सर्वभूताम नाम तस्याम जागृति संयमी, संपूर्ण प्राणियों की परमात्मा की तरफ रात है। यहाँ बड़े होशियार है, इतना मैत्री हमारी जमीन है, इतना रुपया हुआ, इतना इतना घंटा रह गया, एक घंटा का इतना होता है, एक मिनट का इतना पैसा होता है, इतना ब्याज होता है। बड़ी होशियारी, बड़ी सावधानी है। तो यह हमेशा सर्वभूता नाम, प्राणी की जो राहत है तो परमात्मा तत्व तो उधर नहीं जानते, परमात्मा क्या है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, साकार क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, लय योग मंत्र योग, इनको ठीक से जाने, अनुष्ठान करें, कौन से युग में मेरी प्रीति।